ऑल नेशंस गोस्पेल पब्लिशर्स द्वारा ईश्वर के लिए केवल एक ही रास्ता, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता। यूहन्ना 14:6। झूठे धार्मिक शिक्षकों द्वारा लोगों को ईश्वर को खोजने के कई तरीके पेश किए जा रहे हैं, लेकिन सभी भ्रम में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को यह कहते हुए सुनना अच्छा है, मार्ग में हूँ। अगर कभी ऐसा समय था जब हमें उनकी आवाज सुनने की जरूरत थी, ऐसा लगता है कि वह समय अब है। कोई भी इनकार नहीं करेगा कि हम अनिश्चित समय में जी रहे हैं, लेकिन जब यीशु ने पहली बार ये शब्द बोले तो समय उतना ही अनिश्चित था। बहुत धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम सच्चाई थी। यीशु ने फरीसियों, एक धार्मिक संप्रदाय से कहा, उन्हें मेरी पूजा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे मानव निर्मित नियम सिखाते हैं, जैसे कि वे मेरे कानून थे। मत्ती 15:9। निस्संदेह इस भ्रमित दुनिया में आज बहुत से ऐसे हैं, जो थॉमस की तरह यह सवाल पूछ रहे हैं, हम रास्ता कैसे जान सकते हैं। शायद वे इसे जोर से नहीं पूछ रहे होंगे, लेकिन सवाल कई परेशान दिलों में बस एक ही है। एक समय मेरे अपने दिल और दिमाग में वह संदेह था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह अब नहीं है, क्योंकि जब यीशु ने कहा मैं रास्ता हूँ, मेरे लिए पर्याप्त था। जब से आदम ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की अवज्ञा की, तब से मनुष्य परमेश्वर के पास वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग इस बात से भी इनकार करेंगे कि आदमी कभी भटका ही नहीं। वे वास्तव में कहते हैं कि जब एक बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो वह पहले से ही शुद्ध होता है और बस उसे ऐसे ही रखने की जरूरत होती है। इसलिए वे ऐसा करने के अपने व्यर्थ प्रयासों में आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे उन्हें चर्च ले जा सकते हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण दे सकते हैं और एक निश्चित उम्र में उन्हें चर्च के सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, कि समय के साथ यह उन्हें स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए हम युवाओं को प्रशिक्षण देने के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन युवाओं के लिए मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता के बारे में बहुत कम सुनते हैं। बेशक मनुष्य के लिए यह सोचना पूरी तरह से स्वाभाविक है कि वह परमेश्वर के पास वापस जाने के लिए काम कर सकता है। जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो उन्होंने अपनी नग्नता को छिपाने के लिए स्वयं को ढकने का प्रयास किया। वे परमेश्वर से दूर भागे और वाटिका के वृक्षों में छिप गए। जब आदम ने प्रभु के सामने अपना पाप स्वीकार करने के बजाय पाप किया, तो वह उससे दूर भाग गया। आदम को परमेश्वर के पास वापस लाने और उसकी उपस्थिति में स्वीकार्य होने का केवल एक ही रास्ता था, और परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। उसने देखा और आदम को बुलाया और उसे पेड़ों के बीच छिपा पाया। भगवान ने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और उसने आदम और हव्वा को कपड़े पहनाए। उत्पत्ति 3:21। ध्यान दें कि प्रभु ने खोज और आपूर्ति की थी। इसमें हम गरीब दोषी पापियों के लिए परमेश्वर के प्रावधान को देखते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ईश्वर वह है जिसने उसे दुनिया में भेजा है। परमेश्वर वह है जिसने हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए। उसने उस पीड़ा को सहन किया जो हमारी होनी चाहिए थी, वह दर्द जो हमें उठाना चाहिए था। जब तक हम सोचते थे कि उसकी पीड़ा भगवान द्वारा भेजी गई सजा थी, लेकिन हमारे पापों के कारण वह घायल हो गया था, हमारे द्वारा की गई बुराई के कारण पीटा गया था। हम उस दंड से चंगे हुए हैं जो उसने झेला, और उसके द्वारा प्राप्त प्रहारों से चंगा हुआ। हम सब खोई हुई भेड़ों की तरह थे, हम में से प्रत्येक अपने अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन यहोवा ने उस पर दंड हम सभी को दंड दिया। योग्य यशायाह 53:4-6। हम कभी कभी यह व्यक्त करते हुए सुनते हैं कि आदम की अवज्ञा के कारण मनुष्य भटक गया था, परंतु यीशु मसीह के द्वारा पुनः स्थापित हो गया। बाइबल कहती है क्योंकि मसीह पापों के लिए सदा के लिए मर गया, वह पापियों की ओर से एक भला मनुष्य था कि तुम्हें परमेश्वर के पास ले जाए। वह तो शारीरिक रूप से मार डाला गया, परंतु आत्मिक रूप से जिलाया गया। 1 पत्रस 3:18। परमेश्वर के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वह मार्ग नियमों या विनियमों या आचार संहिता की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक शानदार जीवित व्यक्ति यीशु मसीह के माध्यम से है, जो स्वर्ग से नीचे आया था और एक ऐसा जीवन जिया जो बिल्कुल पाप के बिना था। जो लोग उससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, वे भी उसमें कोई गलती नहीं पा सके, और यहूदा, जिसने उसे धोखा दिया, ने स्वीकार किया कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया है। मत्ती 27:4। इसलिए हम देखते हैं कि निर्दोष व्यक्ति जिसने दोषियों के लिए कष्ट सहा, वह दोषी को स्वीकार्य तरीके से ईश्वर के पास लाता है। हर जीवित व्यक्ति हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं है। भजन 39:5। परमेश्वर के वचन का यह कथन यह स्पष्ट करता है कि हम केवल सबसे कमजोर और कमजोर हैं, और यह कि वह हमसे जो चाहता है वह है हमारी उसकी और उसकी बचाने की शक्ति की आवश्यकता को महसूस करना। अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह आत्मधर्मी के साथ है। उन्हें लगता है कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा, यहाँ तक कि हमारे सर्वोत्तम कार्य भी गंदे हैं। यशाया 64:6। हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाने के लिए हमारे सर्वोत्तम कार्यों से बेहतर कुछ करना होगा। इसके लिए परमेश्वर के साथ एक सही संबंध की आवश्यकता होगी, और यह कि हम केवल मसीह में ही पाते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें मसीह यीशु में एक कर दिया है, और परमेश्वर ने मसीह को हमारी बुद्धि बना दिया है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर के साथ ठीक हो गए हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग बन जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30। मसीह निष्पाप था, परंतु हमारे निमित्त परमेश्वर ने उसे हमारे पाप का भागी ठहराया कि उसके साथ मिलकर हम परमेश्वर की धार्मिकता में भागीदार हों। 2 कुरिन्थियों 5:21। हमारे पाप हमारे और परमेश्वर के बीच खड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए क्रूस पर दंड भोगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुए। वह उन लोगों को बचाने के लिए सक्षम है, अभी और हमेशा, जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं। यीशु वफादार गवाह है। प्रकाशित वाक्य 1:5। और उसने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई उसके पास आएगा उसे वह नहीं हटाएगा। यूहन्ना 6:37। उसके पास आने का सीधा सा अर्थ है अपने पापमय जीवन से फिरना, संसार से अपनी पीठ फेरना, ईश्वर से आपको क्षमा करने और आपको शुद्ध करने के लिए कहना। जब आपने प्रभु और उसकी क्षमा को स्वीकार कर लिया है, तो वह आपको अपनी शांति और आनंद देगा। प्रिय पाठक, परमेश्वर के लिए केवल एक ही रास्ता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को यह कहते हुए सुन सकते हैं, मैं मार्ग हूँ? अब घुटने टेके और उससे बात करें और उसे अपने जीवन के बारे में बताएं, उसे बताएं कि आपको खेद है, उसे क्षमा करने के लिए, पापी पर दया करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको अपना बच्चा बनाने और आपको अनंत जीवन देने के लिए कहें। उसने वादा किया था कि वह इसे करेगा, इसलिए उस पर विश्वास करें और अपने दिल में आश्वासन के साथ उठें कि उसने आपको सुना है और काम पूरा हो गया है। जाओ और फिर पाप न करो, और यदि तुम पाओ कि तुम निर्बल हो, तो प्रभु यीशु से विनती करो कि वह तुम्हें दृढ़ करे और तुम्हें पाप पर विजय दिलाए। संसार की वस्तुओं से फिरने का निश्चय करो, तो तुम पाओगे कि वह तुम्हें न केवल वह शांति और आनंद देगा जो संसार नहीं दे सकता, बल्कि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने में ऐसा आनंद मिलेगा कि तुम उसके सुखों को भी नहीं छोड़ोगे संसार, क्योंकि संसार की वस्तुएं क्षण भर के लिए हैं, परंतु जो परमेश्वर देता है वह सदा के लिए है। अब उसकी ओर मुड़ो जो मार्ग, सत्य और जीवन है। धोखेबाज। सच के लिए झूठ बोलकर शैतान ने आदम और हव्वा को धोखा दिया। उसने उन्हें वह दिया जो उसका नहीं था और उसने उन्हें जीवन के लिए खुशी और मृत्यु के लिए दुहक दिया। झूठी धार्मिकता। शैतान आपको एक झूठी धार्मिकता की पेशकश करेगा, आपकी अपनी धार्मिकता के रूप में, जो कि यीशु की सच्ची धार्मिकता के बदले में और उसके माध्यम से गंदी है, केवल पाप से फिरने और यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखने के द्वारा प्राप्त की गई है। झूठी शांति। शैतान आपको यह कहकर झूठी शांति देगा कि सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं और स्वर्ग जाएंगे। यीशु ने फरीसियों से कहा, तू अपने पिता इबलीस की संतान है और अपने पिता की अभिलाषाओं का पालन करना चाहता है। यूहन्ना 8:44। प्रेरित यूहन्ना लिखता है, जो कोई पाप करता रहता है वह शैतान का है, क्योंकि शैतान ने आरंभ से ही पाप किया है। परमेश्वर का पुत्र इसी कारण प्रकट हुआ कि शैतान ने जो कुछ किया है उसे नष्ट कर दें। जो कोई परमेश्वर की संतान है वही करता है। पाप करना जारी न रखें, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उसी में है और क्योंकि परमेश्वर उसका पिता है वह पाप करना जारी नहीं रख सकता। परमेश्वर के बच्चों और शैतान के बच्चों के बीच यह स्पष्ट अंतर है, जो कोई सही काम नहीं करता है या नहीं करता है प्यार उसके भाई भगवान की संतान नहीं है। 1 यूहन्ना 3:8-10। हम नया जन्म लेकर ही ईश्वर की संतान बन सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उसे ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, इसलिए उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वे प्राकृतिक तरीकों से परमेश्वर की संतान नहीं बने, अर्थात एक मानव पिता की संतान के रूप में जन्म लेने के कारण स्वयं परमेश्वर उनके पिता थे। कोई भी परमेश्वर के राज्य को तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वह फिर से जन्म न ले। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से मानव माता पिता से पैदा होता है, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से आत्मा से पैदा होता है। यूहन्ना 1:12-13 और 3:3-6। शैतान आपको बताता है कि कोई नरक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई न्याय नहीं है और कोई पुनरुत्थान नहीं है। पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, आपको आपके पापों को दिखाता है और आपको यीशु को पापवाहक, परमेश्वर का पुत्र दिखाता है, जो दुनिया के पापों को दूर ले जाता है। झूठी खुशी। शैतान आपको झूठी खुशी देने की कोशिश करता है और आपको सांसारिक इच्छाएं देगा। हालांकि ये आपकी आत्मा की लालसा को संतुष्ट नहीं कर सकते। न तो बीयर और न ही शराब आपकी आत्मा की प्यास बुझा सकती है। यीशु ने उस सामरी स्त्री को कुएं पर पानी देने की पेशकश की जो उसकी प्यास बुझाएगी। यूहन्ना 4:5-13। यीशु जीवन का फव्वारा है। यदि हम उस जल में से जो वह देता है पिए, तो वह जल हम में उस जीवित सोते के समान होगा जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। शैतान के झूठे खाली आनंद से धोखा मत खाओ, जो केवल नरक में अनंत दुहक में समाप्त होता है। झूठी रोशनी। शैतान एक झूठी रोशनी के रूप में प्रकट होता है। वह प्रकाश के दूत के रूप में प्रकट होना पसंद करता है। अपने पतन से पहले वह सबसे सुंदर फरिश्ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह पाप को बहुत आकर्षक और सुंदर दिखाने की कोशिश करता है, ताकि आपको लुभा सके और आपको बंदी बना सके, लेकिन यह प्रकाश एक झूठा प्रकाश है। जब धार्मिकता का पुत्र यीशु प्रकट होगा, तो शैतान की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। परमेश्वर का प्रकाश शैतान की तथाकथित महिमा की कुरूपता को प्रकट करेगा। झूठा रास्ता। शैतान आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। एक ही रास्ता है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। शैतान आपको बताता है कि उसके पास एक बेहतर रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है जिस पर कई लोग चलते हैं, लेकिन वह आपको उस सड़क का अंत नहीं दिखाता है जो नरक की ओर ले जाती है। आप जो सोचते हैं वह सही सड़क मौत की ओर ले जा सकती है। मूर्ख लोग हमेशा सोचते हैं कि वे सही हैं। बुद्धिमान लोग सलाह सुनते हैं। धार्मिकता जीवन का मार्ग है, दुष्टता मृत्यु का मार्ग है। नीतिवचन 14:12, 12:15, 28। झूठा धन। शैतान जो धन देता है वह झूठा धन है। अमीर आदमी को धोखा दिया गया था, क्योंकि जब वह मर गया तो वह नरक में गया था। चांदी के 30 सिक्कों से यहूदा की परीक्षा हुई। यीशु को धोखा देकर उसने अनंत जीवन, अनंत शांति, अनंत आनंद और अनंत धन को खो दिया। शैतान तुम्हें रोटी के बदले पत्थर, अंडे के बदले बिच्छू और मछली के बदले सर्प देगा। यीशु में हमारे पास अनंत धन है जो कभी नहीं मिटेगा। मत्ती 7:7-11। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह आपको सच्चे चरवाहे का अनुसरण करने के लिए चेतावनी देने के लिए पर्याप्त है, जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया। सच्चे प्रकाश का अनुसरण करें जो यीशु है। सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। सच्ची दाखलता की एक शाखा बनो। यीशु को सच्चे नबी की सुने, न कि शैतान के पैगंबरों की। अपनी मूर्तों से फिरो, झूठे देवता और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। सच्चे उपासक बनो और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो। यीशु ही सच्ची रोटी है जो तृप्त करती है और अनंत जीवन देती है। धोखा मत खाओ, ईश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। शैतान को अब और धोखा न दें, बल्कि यीशु मसीह का अनुसरण करें, जिन्होंने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ।